ओम शांति। इस सत्र के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करता हूं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी जी। प्लीज दीदी कम ऑन स्टेज। दीदी जी का परिचय देते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रहा हूं। मैंने सेवा करना उनसे सीखा है, बहुत बार हम सेवाओं में साथ गए। तो मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू इंट्रोड्यूस दीदी, बट टू डू द फॉर्मेलिटी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी जी पेशे से इंजीनियर रही हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 4 साल अपनी सेवाएं दी हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैनेजमेंट ट्रेनर हैं और सीनियर राजयोग टीचर हैं। 1994 से 94 से वो इस संस्था में काम कर रही हैं, राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और करा रही हैं, और सन 2001 से वो पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित होकर ईश्वरीय विद्यालय की टीचर हैं। शी इज ट्रेनिंग अस ऑल, और उनके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आज क्लास ले रहे हैं। वेलकम दीदी, ओवर टू यू। प्लीज पे अटेंशन एंड विथ अ रेयर काइंड ऑफ स्पीकर बिफोर यू एंड यू विल बी श्योरली बेनिफिटेड। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? थकान उतरी कि नहीं पहले ये बताइए। सफर की थकान उतर गई? आर यू ऑल कंफर्टेबल? ओके। तो आज का सत्र है कि हम स्वयं को पहचाने। जरूरत है इसकी? जरूरत है इसकी। हम स्वयं को पहचानते तो हैं, लेकिन संपूर्ण पहचान नहीं है। आमतौर पर हम किसी से भी पूछें कि आप कौन हैं, तो क्या उत्तर आता है? नाम बताएंगे। लेकिन ये नाम आप जिस दिन पैदा हुए थे था क्या? और जिस दिन हम इस संसार से चल बसेंगे उसके बाद रहेगा क्या? नहीं। हम अपने परिचय में और क्या बताते हैं? बेशक नाम तो बताते ही हैं, और क्या बताते हैं? हम अपना डेजिग्नेशन बताते हैं, लेकिन वो डेजिग्नेशन भी हमें कभी 25, 20, 22, 25 साल में मिला, यस और नो? उससे पहले वो डेजिग्नेशन तो था नहीं। आप जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब भी वो डेजिग्नेशन रहेगा नहीं। हम अपनी नेशनलिटी बताते हैं। कई बार लोग अपने आप को अपने धर्म से रिलेट करते हैं, पर ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा परिचय जो है, ये टेम्पररी है। हमारा असली सत्य परिचय वो है जो था, है और सदैव रहेगा, और उस परिचय के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहां पर बताया है कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है, जिसमें यूजुअली हम नाम से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम अपनी नेशनलिटी से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने पद से, अपनी योग्यताओं से, अपने जेंडर से या अपने धर्म से रिकॉग्नाइज करते हैं। पर ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ टेम्पररी है। एक बात हमें समझने की आवश्यकता है कि पूरे दिन में हम दो शब्दों का उपयोग अनेकों बार करते हैं। वो दो शब्द कौन से हैं? मैं और मेरा। कितनी बार यूज करते होंगे? कितनी बार यूज करते होंगे ये दोनों शब्द? काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स। पर एक चीज आप गौर करिएगा, कि जिस भी चीज के लिए हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं कि ये मेरा माइक है तो मैं माइक हूं, आप कहेंगे नहीं, माइक अलग है, मैं अलग हूं। अगर मैं ये कहती हूं ये मेरा रिमोट है तो मैं रिमोट हूं, यस प्लीज, मैं रिमोट हूं, नहीं, रिमोट अलग, मैं अलग। मैं कहती हूं ये मेरी साड़ी है, मैं साड़ी हूं, साड़ी अलग, मैं अलग। मैं कहती हूं मेरा हाथ है, मैं हाथ हूं, हाथ अलग, मैं अलग। ऐसे ही कई बार कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं और हमें उस काम में जाना बहुत आवश्यक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो हम क्या कहते हैं, आज बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना बहुत जरूरी है, परंतु मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मेरा रिमोट, मैं रिमोट नहीं, मेरी साड़ी, मैं साड़ी नहीं, मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं, मेरा माइक, मैं माइक नहीं। ऐसे ही मेरा शरीर मतलब यस, मैं शरीर नहीं। देन द क्वेश्चन अराइजेस कि फिर मैं हूं कौन। ये परिचय हमें स्पिरिचुअलिटी में प्राप्त होती है। तो आगे बताया कि मेरी वास्तविक पहचान फिर क्या है। अगर हम किसी को भी सामने देखते हैं तो हमें दिखाई तो ये पांच तत्वों का बना हुआ हड्डी मांस का पुतला ही देता है, और हम सब जानते हैं कि ये पांच तत्वों का पुतला है, इसे कहते हैं मिट्टी का पुतला। और मिट्टी का शरीर एक दिन क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये अटल सत्य है। पांच तत्वों का शरीर पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन मैं जो चीज है, जो शरीर से अलग है, वो क्या है। यहां पर बताया वो मैं रेफर्स टू द एनर्जी, वो शक्ति जो इस शरीर में विराजमान है और ये शरीर को चला रही है। ये पंखा फिर रहा है, अपने आप फिर रहा है, यस प्लीज, स्विच ऑन करने से फिर रहा है, पर ये स्विच ऑन करने से हो क्या रहा है, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी का सप्लाई मिल रहा है, यस। तो ये पंखा अपने आप नहीं फिर रहा है, ये पंखा इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा फिर रहा है। तो ऐसे ही ये शरीर एक मशीन है, जड़ है, विनाशी है, लेकिन इस जड़ और विनाशी शरीर के अंदर इसको चलाने वाली एक शक्ति विराजमान है, और उस शक्ति का नाम क्या है, आत्मा। उसको कहते हैं सोल, स्पिरिट, लाइफ एनर्जी, वाइटल फोर्स। तो जब जब हम पूरे दिन में मैं कहते हैं, ये मैं किसको मीन करता है, ये मैं शब्द शरीर में विराजमान उस शक्ति आत्मा को मीन करता है। अब हम सबने बाहरी नॉलेज तो बहुत ली है, बाहर का इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत 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 है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो आत्मा है, शरीर को चलाने वाली शक्ति है, ये शरीर में है लेकिन कहां पर है। शरीर में है लेकिन कहां पर है, यस प्लीज, कैसे पता चला भ्रुकुटी के बीच में है। कई कहते हैं आत्मा दिल में रहती है, आपने भी सुना होगा, तो हाउ शैल वी कम टू नो कि नहीं आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है। आप में से बहुतों ने उंगली लगा के बताया कि आत्मा यहां है, कैसे मान ले कि आत्मा यहां है, यस, यस प्लीज। थर्ड आई है। ये शरीर एक गाड़ी है और इस गाड़ी में आत्मा ड्राइवर। ड्राइवर की सीट गाड़ी में फिक्स होती है, यस और नो? अगर हम भारत का सिस्टम कहें तो भारत में फ्रंट राइट हैंड की सीट ड्राइवर की फिक्स होती है। कई देशों में ड्राइवर की सीट फ्रंट लेफ्ट हैंड की होती है। पर ड्राइवर अपने सीट पर बैठता है तो ही वो स्टीयरिंग, ब्रेक, हॉर्न, एक्सेलरेटर, क्लच के माध्यम से गाड़ी का नियंत्रण कर सकता है। ड्राइवर किसी अन्य सीट पर बैठकर गाड़ी का नियंत्रण कर नहीं सकता। इज दैट ओके? तो ये शरीर भी गाड़ी है। इस गाड़ी में भी ड्राइवर को वहीं बैठना होगा जहां बैठकर वो गाड़ी को चला सकता है। तो वहां ड्राइवर की सीट कौन सी है? जहां पर स्टीयरिंग भी है, क्लच भी है, एक्सेलरेटर पे भी एक्सेस है, यस और नो? तो ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में हमारा कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा है? यस प्लीज। आप में से जो कहते हैं इस गाड़ी में कंट्रोलिंग पार्ट ब्रेन ही है, वो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। ओके। यदि आप में से किसी को लगता है नहीं इस गाड़ी में ड्राइविंग पार्ट ब्रेन के अलावा कुछ है, तो वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा अच्छा, वो कौन सा पार्ट है? ओके। शरीर का कंट्रोलिंग पार्ट बेशक ये ब्रेन ही है, तो ड्राइवर कहां बैठेगा? इट हैज टू सिट इन द ब्रेन ओनली। ड्राइवर आत्मा ब्रेन के अलावा कहीं और बैठकर इस गाड़ी का संचालन कर नहीं सकता। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में हमें ये स्पष्ट नॉलेज मिली कि आत्मा ड्राइवर की सीट मस्तक के बीच, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच है। अगर आप एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर देखते हैं तो ये जो हमारा मिडल ऑफ फोरहेड है, इसे कहते हैं भ्रुकुटी। इसे क्या कहते हैं? भ्रुकुटी। यहां से करीब 2.5 इंच अंदर, आप यहां से अगर एक होरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो करीब करीब 2.5 इंच अंदर वहां आत्मा विराजमान है। हाउ डज इट लुक लाइक? हाउ डज इट लुक लाइक? ड्राइवर है, ये गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है। गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, यस। एक ही ड्राइवर कभी i10 चलाएगा, कभी मर्सिडीज चलाएगा, कभी BMW चलाएगा, लेकिन सीट कौन सी होगी? सीट कौन सी होगी? फ्रंट राइट हैंड सीट, राइट। ऐसे ही आत्मा ड्राइवर आज इस गाड़ी को ड्राइव कर रही है, तो कहां बैठी है? मस्तक के बीच। अगले जन्म में उसे एक दूसरी गाड़ी मिलने वाली है, तो भी कहां बैठेगी? मस्तक के बीच। पिछले जन्म में इसे कोई और गाड़ी मिली थी, तो भी कहां थी? मस्तक के बीच। इज इट क्लियर? देन द क्वेश्चन अराइजेस, ये आत्मा है कैसी? हाउ डज इट लुक लाइक? क्योंकि आत्मा आंखों से देखने की चीज नहीं है। सोल इज अ मेटाफिजिकल एंटिटी, पराभौतिक। तो पराभौतिक सत्ता होने के नाते से उसको हम इस भौतिक नेत्रों से देख नहीं सकते। फिजिकल आईज हैव इट्स ओन लिमिटेशंस। हम केवल भौतिक चीजों को ही इन आंखों से देख सकते हैं। और आत्मा भौतिक नहीं है, इट्स एन एनर्जी। और विज्ञान क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो शक्ति का नाश नहीं हो सकता, शक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यानी आत्मा जो एनर्जी है वो सदैव है ही। बस आज इस शरीर में है, कल किसी और शरीर में होगी। अब प्रश्न ये उठता है, देख तो सकते हैं नहीं, तो पता कैसे चले कि आत्मा कैसी है? इन आंखों से दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं। ये एक महसूसता का विषय है, अनुभूति का विषय है। हवा को देख पाते हैं? हवा को देख पाते हैं? नहीं, महसूस करते हैं। आज ठंडी हवा है, आज गर्म हवा है, आज तो हवा है ही नहीं। तो ऐसे ही आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। और आत्मा वास्तव में एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इट्स अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति सत्ता है। कहां पर है? कहां पर है? सभी अपनी उंगली लगा के बताएंगे। यस, आत्मा यहां पर चमक रही है। इट्स लाइक अ शाइनिंग स्टार इन द स्काई। परमात्मा हमें कहते हैं, स्टार तो रियल में बड़े होते हैं पर दूरी के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं, बट आत्मा रियलिटी में बहुत 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 सूक्ष्म है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, परंतु इसे हम एहसास कर सकते हैं। तो पहली बात समझ में आई, मैं कौन? मैं आत्मा। आत्मा क्या चीज है? इट्स एन एनर्जी। इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर। आत्मा गाड़ी में कहां बैठी है? भ्रुकुटी में, मस्तक के बीच। आत्मा है कैसी? इट्स अ स्पार्कलिंग पॉइंट ऑफ लाइट। आगे बढ़े। अब आगे हम समझते हैं कि आत्मा और शरीर के बीच का संबंध कैसा है। जैसे सीप और मोती, ड्राइवर और कार, घर और मालिक। अगर किसी घर में मालिक नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, तो उस घर की वैल्यू नहीं होती है। गाड़ी पड़ी है पर चलाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो गाड़ी काम की नहीं रहेगी। ऐसे ही इस शरीर का भी मूल्य कब तक है? जब इसके अंदर आत्मा विराजमान है। आज मान लीजिए आपसे बात करते करते, इन केस ये जो आत्मा है, लाइट है, एनर्जी है, ये बाहर निकल जाए, बिकॉज आत्मा ने शरीर में एंटर किया है और एक दिन आत्मा को शरीर से बाहर निकल जाना है ना? तो अगर आपसे बात करते करते आत्मा शरीर से बाहर निकल गई तो क्या होगा? क्या होगा? बोलना बंद, देखना बंद, आपकी बातें सुनना बंद। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि यह शरीर का मूल्य तब तक है जब तक इसके अंदर आत्मा विराजमान है। और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, वो शरीर क्या कहलाता है? वो शरीर क्या कहलाता है? मृत, डेड बॉडी, मुर्दा कहलाता है। और आपने सुना होगा कि जब डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं तो कहते हैं अर्थी जा रही है। सुना है? क्या जा रही है? अर्थी जा रही है। अर्थी शब्द का अर्थ क्या है? अरथी, शरीर रथ, और इस रथ में आत्मा रथी, रथवान। अब ये मुर्दा क्या है? रथी बाहर निकल गई है तो ये शरीर क्या है? अरथी, यानी रथवान के बिगर ये शरीर कोई काम का नहीं रह जाता, इसीलिए इसे हम जला देते हैं या दफना देते हैं। तो शरीर का मूल्य तब तक है जब तक इसमें आत्मा विराजमान है। शरीर का केयर करना हम सब जानते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी बेसिक नेसेसिटीज है और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। यस, पर कभी आपने सोचा कि आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है? शरीर की रिक्वायरमेंट्स का तो सबको पता है, पर ये आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है? हां जी, ऊर्जा, शांति, कुछ आवाजें आ रही है, और भी कुछ? आनंद, खुशी, प्रेम। तो ये आत्मा की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे फुलफिल करें, वो हमें यहां पर सिखाया जाता है। तो एक चीज यहां बताई गई कि आत्मा अविनाशी है, इसे शस्त्रों से काट नहीं सकते, इसे अग्नि से जला नहीं सकते, इसे पानी से गीला नहीं कर सकते, इसे हाथ से पकड़ नहीं सकते। तो पहली बात, जब आत्मा का नॉलेज हमें पक्का होता है, उससे पहला फायदा ये होता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो जो मृत्यु का भय होता है, उस भय से हम बाहर निकल आते हैं। कोई मारेगा तो किसको मारेंगे? शरीर खत्म होगा, आत्मा कभी खत्म ना होने वाली, वो चैतन्य सत्ता है। इसलिए आत्मा को कहते हैं आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आप शरीर के लिए कहेंगे ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, आत्मा के लिए कहेंगे बच्चा है बूढ़ा है? इट्स नॉट एप्लीकेबल। आप शरीर को देखते हुए कहेंगे ये मेल है ये फीमेल है, आत्मा के लिए मेल सोल फीमेल सोल? हां जी, नॉट एप्लीकेबल। आप किसी व्यक्ति के पहनावे को देखकर या फिर उनके रिचुअल्स को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, बट आत्मा को ऐसा कोई टैग लग सकता है? हिंदू सोल, मुस्लिम सोल, सिख सोल? यस प्लीज। नहीं, ये जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, ये कुछ भी आत्मा पर एप्लीकेबल नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सब आत्माएं कैसे हैं? हम सब आत्माएं एक जैसे हैं, स्पार्कलिंग पॉइंट ऑफ लाइट। मेरे मस्तक में भी एक ज्योति चमक रही है, इनके मस्तक में भी ज्योति चमक रही है, इनके मस्तक में भी ज्योति चमक रही है, इनके में भी, और जो लास्ट बैठे हैं उनके मस्तक में भी क्या हो रहा है? एक सूक्ष्म ज्योति चमक रही है, और वो ज्योति इस पूरे शरीर का संचालन कर रही है। तो आंखें देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, पर देखती कौन है? देखती कौन है? आत्मा। कान सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, पर सुनती कौन है? आत्मा। इसीलिए जब आत्मा निकल जाती है तो आंखें तो है पर देखना सुनना बंद। आपने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति बहुत सीरियस है, बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते मरीज को अंदर ले आओ। यस, मरीज को अंदर ले जाया जाता है, डॉक्टर अपनी पूरी ट्रीटमेंट्स देते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मान लीजिए डॉक्टर के पूरी कोशिश करने के बाद भी मरीज सरवाइव नहीं करता है तो डॉक्टर कहते टेक द पेशेंट आउट? ऐसा कहते टेक द पेशेंट आउट? टेक द पेशेंट आउट नहीं कहते। अब ये मर गया है, वो पेशेंट मर गया है, मरने के बाद नहीं कहते टेक द पेशेंट आउट, क्या कहते? टेक द बॉडी आउट। तो ये पेशेंट और बॉडी में क्या मिसिंग है? वो लिविंग एंटिटी, वो लाइफ एनर्जी, वो आत्मा, वो सोल मिसिंग है। तो हम जीते जागते हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, क्योंकि अंदर आत्मा ज्योतिबिंदु विराजमान है। तो यहां बताया आत्मा शरीर का मालिक है और पांच इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है। तो ये जो नॉलेज ऑफ द सेल्फ, स्वयं की सत्य पहचान, इससे दूसरा फायदा, पहला फायदा क्या? मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि आत्मा तो कभी जलने मरने वाली है ही नहीं। दूसरा फायदा, जब हम अपने आप को आत्मा, इस शरीर का मालिक, पांचों इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता समझते हैं तो इन पांचों इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल आ जाता है। आज की तारीख में हम कहते दीदी बोलना तो नहीं चाहिए था, पर जुबान से बात फिसल गई, इसका मतलब जुबान कंट्रोल में नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो समझते मेरे आंख नाक कान जीवा मेरी सारी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, जो ऐसा समझते हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। पांचों इंद्रियां मेरे कंट्रोल में। अच्छा सबको महसूस होता है कि कंट्रोल में नहीं है, तो आप में से कौन कौन चाहेंगे कि कंट्रोल में आ जाए? आई होप सब चाहेंगे, राइट? तो ये कंट्रोल में आने के लिए आज का ये जो सत्र है आत्मज्ञान, सिर्फ ज्ञान ही नहीं लेकिन उससे बढ़कर आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आत्मा राजा हूं, ये आंख मेरी प्रजा, तो प्रजा राजा के कंट्रोल में। इट्स माई चॉइस वॉट टू सी वॉट नॉट टू सी। ये कान मेरी प्रजा मेरे कर्मचारी, इट्स माई चॉइस क्या सुनू क्या नहीं सुनू। ये मुख मेरी प्रजा, इट्स माई चॉइस क्या बोलू क्या नहीं बोलू। तो आज पूरा दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे करेंगे क्या प्रैक्टिस करेंगे? आई द सोल एम द किंग, मैं आत्मा कौन हूं? राजा हूं। कौन सा सिंहासन मिला है? भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा राजा विराजमान हूं। आई चूज टू सी, आई चूज टू हियर, आई चूज टू स्पीक। तो क्या चूज करेंगे? आई चूज टू सी गुड, आई चूज टू हियर गुड, आई चूज टू स्पीक गुड। पॉसिबल? पॉसिबल। सबकी अच्छाई देखेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, कोई उलट पलट सुनाए तो? इट्स अ चॉइस टू विदड्रॉ आवर इंटरेस्ट। कान में पर्दा नहीं है बट इट्स अ चॉइस। आप अगर अपना इंटरेस्ट विदड्रॉ करेंगे तो आपके बाजू में भी बैठ के कोई कुछ कह रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा। पॉसिबल? और आई चूज टू स्पीक, आई चूज टू स्पीक गुड ओनली। हमें दूसरों से सिर्फ अच्छा ही बोलना है। हमारे यहां सिखाया जाता कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, तो इसकी प्रैक्टिस आज कर सकते। मैं आत्मा राजा और मुझे मेरे मुख से क्या बोलना है? मीठा बोलना है, ठीक है? तो दूसरा फायदा, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम समझते हैं आत्मा काम कैसे करती है। जैसे शरीर को वर्क करने के लिए हार्ट है, पंपिंग का काम करता है, किडनी है, फिल्टर का काम करता है, ऐसे ही आत्मा कैसे काम करती है। आत्मा को कार्य करने के लिए आत्मा के अंदर तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। वो तीन सूक्ष्म शक्तियां क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा के संकल्प शक्ति का नाम है, यानी मन से हम सोचते हैं और मन के विचार हमारे सारे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई विचार हमारे सकारात्मक होते हैं, कोई विचार हमारे नकारात्मक होते हैं, कोई व्यर्थ भी होते हैं और कोई आवश्यक भी होते हैं। आपको ये जानकर सुनकर आश्चर्य लगेगा कि मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि आज की तारीख में एक साधारण व्यक्ति कम सोचता है ज्यादा सोचता है? जितना जरूरत उतना सोचता है या जरूरत से ज्यादा सोचता है? इट्स अ कॉमन थिंग। आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके माता जी लेके आती है, कहती है मेरा बच्चा बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। छोटे बच्चे को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। अगर हम पॉजिटिव सोचते तो प्रॉब्लम नहीं होता। और रिसर्च कहती है कि आज का इंसान 80% समय अतीत में रहता है, 15% समय फ्यूचर वरीज में रहता है और वर्तमान में कितना जीता है? मात्र 5%। और वो 5% में हमारे थॉट्स कितने पॉजिटिव होते हैं, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क। तो परमात्मा हमें कहते हैं मन मिला है सोचने के लिए, पर क्या सोचना है? दैट्स अगेन अ चॉइस। मन के द्वारा सोचने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। तो मन सोचने की शक्ति है, पर क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है, दैट इज अगेन अ चॉइस. नेसेसरी सोचना है या अननेसेसरी सोचना है, दैट इज अगेन अ चॉइस. तो आज थोड़ा ट्राई करेंगे. पूरे दिन में हमारे थॉट्स कैसे हो? पॉजिटिव. पॉजिटिव किसे कहते हैं? अच्छा, सकारात्मक किसे कहते हैं? पॉजिटिव. क्या बात है. पॉजिटिव थॉट जिससे हमारी एनर्जी बढ़ जाए. शांति, प्रेम, खुशी, दया, क्षमा, करुणा, सहयोग, ये थॉट्स को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव. ईर्ष्या, द्वेष, बदला, इन थॉट्स को क्या कहेंगे? नेगेटिव. एक भक्त बहुत भक्ति करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे कहते तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा. खुशी क्या हो जाती है? खुशी क्या हो जाती है? भाई मुझे तो मिल ही रहा है ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है पड़ोसी को डबल मिले तो. परंतु रियलिटी हम सबको पता है. उसने गाड़ी मांगा, पड़ोसी की दो गाड़ियां आ गई. एक मकान मांगा, पड़ोसी के. अब इसको लगा भाई ऐसे तो फिर आप सभी जानते होंगे उसने क्या मांगा. उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, मैं दूसरी आंख से तो देख सकूंगा पर मेरा पड़ोसी, उसके दोनों फूट जाएंगे. ईर्ष्या चेक करिए है अंदर कि नहीं है. द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार. अगर आप बारीकी से चेक करेंगे तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराइयां हमारे अंदर हैं और वो सारी चीजें हमारे थॉट्स के रूप में, हमारे एक्शन के रूप में, हमारे वर्ड्स के रूप में वो सामने आती हैं. तो आज एक एक्सरसाइज करेंगे, कोशिश करेंगे. जब हमारे मन के विचार नेगेटिव हो या वेस्ट हो तब क्या कोशिश करेंगे? इसे हम पॉजिटिव बनाएं. ये जो आप यहां 3 दिन रहेंगे आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे आपको हर थॉट को पॉजिटिव बनाए रखना है. तो ये मन सोचने का कार्य करती है और हमें कोशिश करनी है कि हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए. मन में जो थॉट्स आते हैं वो ट्रिगर कैसे होते हैं? थॉट्स आते कैसे हैं? हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं? आपने किसी चीज को टच किया, आपको लगा अरे बहुत सॉफ्ट है ना? तो थॉट कैसे आया सॉफ्ट है? आपने टच किया. आपने कुछ खाया है ना, आपको लगा बहुत तीखा है, मन में थॉट क्या आया? तीखा है. पर ये तीखा है थॉट कैसे आया? जब आपने उसको टेस्ट किया. तो ये जो टेस्ट हम लेते हैं, फील करते हैं, वो फील करने वाली शक्ति कौन है? फील करते हैं जीवा के द्वारा, पर फील कौन करती है? आत्मा. डेड बॉडी है, आप मुंह खोलिए, जीभ में नींबू डाल दीजिए, थोड़ा सा बूंद, खट्टा फील होगा क्योंकि फील करने वाली शक्ति निकल गई है. सो इज इट क्लियर? आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली कौन है? मैं आत्मा हूं. दूसरी शक्ति है बुद्धि. बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि निर्णय लेती है. मन के विचार पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, नेसेसरी हो सकते हैं, लेकिन ये विचार जब बुद्धि को फीड होते हैं तो बुद्धि उस पर अपना निर्णय देती है कि ये जो थॉट मेरे अंदर चला इसे करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसे करने से फायदा होगा या नुकसान होगा. मान लीजिए मुझे थोड़ा सा जुकाम है, हल्की खांसी आ रही है, पर गर्मी तो है, तो मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाऊं. मन कर रहा है आइसक्रीम खाऊं. बुद्धि क्या कहेगी? यस प्लीज. बुद्धि क्या कहेगी? अभी आइसक्रीम नहीं खाना, जो काम ठीक होने दो, फिर एक या दो भले खाना, है ना। आप यहाँ बैठे हैं, क्लाइमेट कूल है, तो आपको थोड़ी नींद आ रही है, पर बुद्धि क्या कहती है कि नहीं, मैं यहां सीखने आया हूं, मैं यहां कुछ नया जानने आया हूं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी नींद को भी भगा रहे, अलर्ट हो रहे कि नहीं नहीं मुझे एक्टिव अलर्ट होकर सुनना है। तो ये काम कौन कर रही है, मन तो आपको सुलाने वाला था, लेकिन बुद्धि आपको क्या कर रही है, बुद्धि आपको सोने नहीं दे रही है, बुद्धि आपको अलर्ट रख रही है। तो ये डिसीशन क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो ये निर्णय लेने वाली शक्ति कौन है, बुद्धि। डेड बॉडी सोच सकता है, नहीं। डेड बॉडी डिसीजन ले सकता है, नहीं। तो ये सोचने वाली, निर्णय करने वाली शक्ति कौन है, आत्मा। अब आत्मा की तीसरी शक्ति क्या है, संस्कार। जो हम बार बार करते हैं वो एक रिकॉर्ड की तरह आत्मा में फीड हो जाते हैं, और जो रिकॉर्ड हमने फीड किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। मान लीजिए मैंने 200 बार चोरी की है, 500 बार चोरियां की है, मेरे अंदर चोरी के संस्कार हैं, ठीक है। इस हॉल में आई वॉज द फर्स्ट मैन टू एंटर, मैं पहले पहले मैंने एंट्री ली और मैंने देखा एक पर्स पड़ा है। तो यदि मेरे अंदर चोरी के संस्कार हैं, तो मेरे में थॉट क्या आएगा, मेरे में थॉट क्या आएगा, मैं आगे पीछे देखती हूं, अच्छा कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो मैं इसे उठा सकती हूं। तो हमारे थॉट्स हमारे संस्कारों के आधार पर क्रिएट होते हैं। अगर मेरे संस्कार बहुत पॉजिटिव हैं, ऑनेस्ट हैं, ट्रुथफुल हैं, तो मैं यहां हॉल के अंदर एंट्री की, मैंने देखा पर्स पड़ा है, तो मेरे अंदर थॉट क्या आएगा, बेशक ले लूं उठा लूं, ये थॉट तो आएगा ही नहीं। क्या थॉट आएगा, क्या थॉट आएगा, या तो जाएगा ही नहीं ध्यान कि भाई पड़ा है तो पड़ा है, जिसका होगा वो ले लेंगे, या तो क्या थॉट आएगा, ऑर्गेनाइजर को संभलवा देते हैं ताकि जिनका भी होगा वो पूछ कर उसे दे देंगे। तो ये संस्कार हमारे अंदर डेवलप कैसे होते हैं, और संस्कारों के आधार पर विचार क्रिएट होता है, ये हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। हमारे अंदर जो संस्कार है वो कई बातों को लेकर हमारे अंदर डेवलप होते हैं। हमारे संस्कार हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कोई 6 साल का बच्चा, उसे शास्त्रों के श्लोक कंठस्थ है, उसने अभी संस्कृत पढ़ना सीखा ही नहीं है, परंतु वो कई सारे संस्कृत के श्लोक बिल्कुल निर्भुल तरीके से गा पा रहा है। कैसे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल, हम कहेंगे ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। एक छोटी सी बच्ची 3 साल की, जैसे ही म्यूजिक बजता है उसके पैर थिरकने लगते हैं और बहुत सुंदर पोजेस देती है। घर में मम्मी पापा किसी को भी डांस नहीं मालूम। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, पूर्व जन्म के संस्कार। इससे एक बात समझ में आती है कि जब किसी व्यक्ति का देहांत तो होता है, आत्मा जब शरीर से बाहर निकल जाती है, हम सब जानते हैं, कोई चीज साथ में लेकर जाती है, कोई व्यक्ति साथ में जाता है, नहीं। आपके पास ज्वेलरी है वो साथ में जाएगी, नहीं। आपके पास जो धन संपदा है, बैंक बैलेंस है, वो साथ में जाएगा, नहीं। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, सबको पता है कि जब व्यक्ति जाता है या आत्मा जब चली जाती है तो साथ में कुछ भी नहीं जाता, पर एक चीज जाती है, क्या जाता है, संस्कार। तभी कहने में आता है पूर्व जन्म के संस्कार। तो यानी आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। आत्मा जाती है तो साथ में मन बुद्धि संस्कार है ही। तो एक है हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। तो इस जन्म में हमने अच्छे संस्कार भरे होंगे तो वही संस्कार लेकर जाएंगे। अगर हमने संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया तो अच्छे बुरे जैसे भी संस्कार होंगे वही साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करके कॉन्शियसली अपने अंदर अच्छे संस्कार डेवलप करना चाहिए, यस और नो? ताकि जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकले और अगले शरीर में जाए तो कैसे संस्कारों के साथ जाए? अच्छे संस्कारों के साथ जाए। और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अच्छे संस्कार भरना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम नहीं कह सकते ये माताजी की पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहली बात, पूर्व जन्म के संस्कार ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं। दूसरा बताया माता पिता से मिले हुए संस्कार, जेनेटिक इफेक्ट के कारण माता पिता के कुछ स्वभाव का असर अक्सर बच्चों में दिखाई देता। पिताजी कंजूस, बेटा भी कंजूस, होता है कई बार ऐसा। मां दयालु, बेटा भी दयालु। पिता हेल्पिंग, बेटा भी हेल्पिंग नेचर वाला, होता है ऐसा? आप में से किस किसने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ कुछ तो माता पिता के संस्कार हमारे में भी दिखाई देते? यस, इट्स क्वाइट नेचुरल। तीसरा है, जैसी संगत में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, उनके स्वभाव, संस्कार, हाव भाव, बोलचाल का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। फिर हमें संगत कैसी करनी चाहिए? अच्छी संगत, ताकि उनका अच्छा प्रभाव पड़े और उनके प्रभाव से हमारे अंदर अच्छी बातें डेवलप हो। चौथा बताया है वर्तमान के कर्म। आपको संगत अच्छी नहीं मिली तो भी आपके पास चॉइस है, आप संगत के प्रभाव से अपने आप को बचाकर रख सकते। यस और नो? यस और नो? मुझे पता है, मेरी बुद्धि मेरे अंदर है, मुझे पता है मेरे दोस्त के साथ यही, मेरा कोवर्कर यही है, मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे बहुत सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करना पड़ता है, वो बहुत आलसी है, बट स्टिल इट्स अ चॉइस कि मुझे आलसी बनना है या नहीं बनना है। आई चूज टू रिमेन एक्टिव। तो मैंने अपने वर्तमान के कर्म में एक्टिवनेस को, अलर्टनेस को, लॉयल्टी को, ऑनेस्टी को मैंने एग्जीक्यूट किया है, तो मेरे संस्कार कैसे बनेंगे? अच्छे बनेंगे। नो मैटर कि मुझे कैसी संगत मिली, नो मैटर। ऐसा भी हो सकता है माता पिता के प्रभाववश मेरे अंदर कंजूसी है, लेकिन मैं उस कंजूसी को काउंटर करूं, पॉसिबल? पॉसिबल? यस। हो सकता है मेरे पूर्वजन्म के संस्कार कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन मैं अपनी कोशिश से, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने संस्कारों को उसके ऑपोजिट पॉजिटिव बना लूं, पॉसिबल है? यस। चाहे ये पूर्वजन्म के, चाहे माता पिता से मिले हुए, चाहे संगति के असर के कारण, यद्यपि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव है तो भी हमारे पास चॉइस है उसको पॉजिटिव बनाने का। हम कंप्लेन नहीं कर सकते, क्या करें मेरी माता जी ऐसी है ना तो मैं भी ऐसी हूं, क्या करें मुझे माहौल ही ऐसा मिला ना इसलिए मैं ऐसी हो गई, हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मा के अविनाशी संस्कार। कोई भी चीज का अस्तित्व होता है तो उसके कुछ मौलिक गुण अवश्य होते हैं। मान लीजिए जल, जल का धर्म क्या है? शीतलता। आप जल को 500 बार गर्म करिए, कुछ समय के बाद आपको जल क्या मिलेगा? ठंडा, क्योंकि उसका धर्म है। जल का धर्म है ऊपर से नीचे की ओर बह जाना, आप उसका रास्ता रोकिए तो भी क्या होगा? उसकी कोशिश, जल का प्रयास बना रहेगा दूसरा रास्ता ढूंढकर नीचे बह जाने के लिए। ऐसे ही अगर आत्मा कोई चीज है, अगर आत्मा का अस्तित्व है तो इसके भी कुछ मूलभूत गुण अवश्य ही है, पर हमने कभी आत्मा के उन मूलभूत गुणों पर गौर नहीं किया है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि आत्मा के अंदर जो मूलभूत गुण है वो है सात। इसीलिए आत्मा को सत्वगुणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आत्मा को? सत्वगुणी कहा जाता। और ये आत्मा के सात गुण क्या है? ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति। आत्मा के सात गुण याद रखने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ये तीन दिन जो आप कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, आपको जो डायरी मिली आप उसका उपयोग करिए। मैं आत्मा मूलतः ज्ञान स्वरूप हूं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, कोई नई चीज देखता है, क्यूरियोसिटी रहती है क्या है जानने के लिए। व्यक्ति 80 साल का बुजुर्ग हो गया, घर में नई चीज आई, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, फिर भी बनी रहती है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। पवित्रता, शांति, हर व्यक्ति शांति चाहता है। यस, हर व्यक्ति शांति चाहता है। क्यों? क्यों? हमारे बॉडी को पानी चाहिए। प्यास लगती है? प्यास कब लगती है? प्यास कब लगती है? जब शरीर में पानी का लेवल कम हो जाता है। शरीर को पानी चाहिए क्योंकि शरीर पानी से बना हुआ है। यस और नो? यस और नो? ऐसे ही आत्मा को शांति चाहिए क्योंकि आत्मा के अंदर शांति है। तो शांति चाहिए, ये बात कब आती है? जब शांति का लेवल कम हो जाता है। खुशी चाहिए, ये चाहिए वाली बात कब आती है? जब खुशी का लेवल कम हो जाता है। तो ये रियलिटी है कि आज की तारीख हमारे अंदर ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता का लेवल क्या हो गया है? कम हो गया है। तो जितना जितना हम सेल्फ को रियलाइज करेंगे, जितना जितना हम अपने आप को सुप्रीम से जोड़ेंगे, फिर से वो लेवल क्या हो जाएगा? ये लेवल भर जाएगा। तो आत्मा के सात गुण थोड़ा सा आवाज से पढ़ेंगे सभी। हाँ जी पढ़िए प्लीज। यस, तो ये सात आत्मा के मौलिक गुण है। यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। ये सारे गुण आत्मा के अंदर है, इट इज देयर। पर शांति के ऊपर थोड़ी परतें पड़ गई है क्रोध की, जो हमारी शांति को भंग कर देती है। और यहां आप जिस स्थान पर आए हैं, यहां पर आपको एक बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा उन परतों को हटाने के लिए, क्रोध की परत, ईर्ष्या की परत, द्वेष की परत। और जैसे ये परतें हट जाएंगी क्या हो जाएगा? अंदर जो शांति, प्रेम, आनंद का गुण छिपा हुआ है, आप उसे बहुत अच्छे से अपने भीतर एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो आज पूरा दिन प्रैक्टिस क्या करेंगे? यहां आपको भोजन नहीं बनाना है, लेकिन जब आप घर पे जाके भोजन बनाएंगे तब क्या महसूस करेंगे? कि हाथों से कर्म करने वाली कौन? मैं आत्मा। आज आप पूरे दिन में बहुतों से बातचीत करेंगे, बातचीत करते हुए क्या कोशिश करेंगे कि मैं भी चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा और मैं जिनसे बात कर रही हूं वो भी चमकते हुए ज्योति बिंदु आत्मा। थोड़ा थोड़ा इन चीजों का अभ्यास करने के लिए ट्राई करिएगा। कोई भी कार्य करते मैं आत्मा हाथों से कार्य कर रही हूं। जब आप बिस्तर पे सोने जाएंगे तो भी क्या महसूस करेंगे? मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक के बीच विराजमान। तो एक मिनट के लिए साइलेंट होकर स्ट्रेट होकर बैठिए। कमर सीधी, मैं आपको कुछ विजुअल्स बताऊंगी, आप वो विजुअल सामने लाइएगा और उसके आधार पर अपने आप को रिलेट करते जाइएगा। सामने एक चित्र लाई मिट्टी का दीपक, देखिए मिट्टी के दीपक को, दीपक में बाती जल रही है, मिट्टी का दीपक और दीपक का लौ। लौ दीपक से अलग, ऐसे ही ये शरीर मिट्टी का और इस मिट्टी के शरीर में मैं आत्मा ज्योति, मेरा ध्यान मस्तक के बीच महसूस करे, एक लौ चल रही है मस्तक के बीच, जैसे ज्योति का प्रकाश फैलता है ऐसे मुझ आत्मा ज्योति का प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म, आज तक जो बातें मेरे सामने आई है उन सब बातों पर मैं फुल स्टॉप लगा रही हूं। अतीत की बातों से मुक्त, मेरा मन शांत स्थिर, मेरा फोकस आज अभी क्या करना है, भविष्य की चिंता से भी मुक्त, जो मैं आज करूंगी उसी का फल मुझे भविष्य में मिलेगा। मेरा फोकस आज अभी क्या करना है, और महसूस करें मैं एक दिव्य चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच विराजमान, महसूस करे स्वयं को एक प्रकाश के पुंज के रूप में, जैसे एक बल्ब का प्रकाश फैलता है ऐसे मुझ आत्मा से भी प्रकाश मेरे इर्द गिर्द पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। मस्तिष्क से बाहर भी फैल रहा है, जैसे बल्ब की रोशनी पूरे कमरे को रोशन करती है ऐसे मुझ आत्मा का प्रकाश इस पूरे हॉल में फैल रहा है। ये शांति का प्रकाश है, मैं शांत स्वरूप हूं। मन के विचारों की गति बिल्कुल शांत हो गई है, खोल लीजिए। ओम शांति। पॉसिबल, सेल्फ को रियलाइज करना पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल। तो ये प्रैक्टिस हमें दिन भर में बार बार करना है कि मैं कौन, वो चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा। आज लाइफ में हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, अल्टीमेट क्या चाहिए? अल्टीमेट शांति चाहिए, और वही हम मिस कर रहे हैं। यस, वही हम मिस कर रहे हैं। तो इसलिए भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा ध्यान हटाकर क्या करना है, दिन भर में बीच बीच में अंदर जाना है, क्योंकि शांति बाहर नहीं है, शांति कहाँ है? अंदर है। जब आप अंदर एक्सपीरियंस करेंगे, वही शांति आपको बाहर भी महसूस होगी। तो यहां पर बताया कि हमें दिन भर में इस चीज का अभ्यास करना है कि इस देह में विराजमान, देह से अलग मैं वो चेतन शक्ति आत्मा हूं। अभी आत्मस्मृति से परिवर्तन क्या होगा? शरीर समझते हैं तो तुलना है, पर आत्मा समझेंगे तो, आत्मा समझेंगे तो स्वीकार भाव, जो जैसा है बहुत अच्छा है। पांच उंगलियां बराबर नहीं हो सकती है। आप कहेंगे मैं ऑनेस्ट, सब ऑनेस्ट बन जाए, नहीं हो सकता। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना। आप कहेंगे मैं पंक्चुअल, सब पंक्चुअल हो जाए, पॉसिबल? सब पंक्चुअल हो जाए, पॉसिबल? जो जैसा है उसे स्वीकार करना है ना। और सबसे बड़ी बात, जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी, हमने उसको समझ लिया। अगर कोई अशांत है, अगर आप उस व्यक्ति के लिए बारंबार ये विचार पैदा करते हैं कि ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, तो इससे क्या फायदा होगा? उनमें शांति का गुण आ जाएगा। मान लीजिए मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं बार बार कहूं मैं तो गुस्सैल हूं, गुस्सैल हूं, तो गुस्से का गुण बढ़ेगा घटेगा? पर ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे क्या कहना है अपने आप को, क्या होगा? उससे शांति का गुण आ जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी हमें अपने आप से पॉजिटिव बात करना सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी हमें दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना सिखाती है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे जिसके माध्यम से आप दूसरे के अंदर पॉजिटिविटी इन्फ्यूज कर सकते हैं। यस। दूसरा, शरीर के नाते से कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई नाटा, पर आत्मा के नाते से हम सब एक है, है ना। एक पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो वो यूनिटी की फीलिंग आती है। इच्छाओं के अधीन है देहभान के कारण, और जब आत्मस्मृति आएगी तो हम क्या बन जाएंगे? मालिक, इंद्रियों के भी मालिक, और क्या चॉइस ऑप्ट कर रहे हैं उसके भी हम मालिक। शरीर है, शरीर समझते तो मृत्यु का भय है, आत्मा समझते तो उस भय से परे। अब एक प्रश्न आता है, तीनों लोकों का ज्ञान हमें परमात्मा देते हैं, ये है साकार मनुष्य लोक, जहां हम आप रह रहे हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हम हैं, ऊपर देखते नीला आसमान दिखाई देता है, सूरज चांद सितारे दिखाई देते हैं, इससे ऊपर? यस प्लीज, इससे ऊपर? इससे ऊपर का ज्ञान हमें आध्यात्मिकता में प्राप्त होता है। एक कहावत है, वेयर साइंस स्टॉप स्पीकिंग देयर स्पिरिचुअल साइंस स्टार्ट्स स्पीकिंग, देयर साइलेंस स्टार्ट्स स्पीकिंग। तो ये साकार लोक में हम सभी रह रहे हैं, ये हमारी कर्म भूमि है। इससे ऊपर सूक्ष्म लोक है, ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी कहते हैं इसे, और इससे ऊपर निराकारी लोक है, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है। जैसे ये आसमान नीला, वैसे वो आसमान सुनहरा लाल, और ये हम सब आत्माओं का असली ठिकाना है। आपने सुना होगा कहा जाता है ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज। आपने शेक्सपियर का लेख पढ़ा होगा, वो क्या लिखते हैं, ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड एवरी सोल इज एन एक्टर। यानी ये सृष्टि रंगमंच है और कोई रंगमंच एक्टर का घर नहीं होता है। तो अगर ये पूरी सृष्टि ही हम सभी आत्माओं का रंगमंच है, इसका मतलब ये सृष्टि हमारा घर नहीं है। तो फिर हमारा घर कौन सा है, सृष्टि से बाहर कहीं, कहां? नीले आसमान से पार, वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। तो ये सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसे परलोक कहते हैं, जिसे शांति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, ये हम आत्माओं का परमानेंट एड्रेस है। तो हमारा परमानेंट एड्रेस ब्रह्मलोक, टेम्पररी एड्रेस मस्तक के बीच। आप कभी दिल्ली में पैदा होते, किसी जन्म में मुंबई में जन्म लेते, लेकिन अल्टीमेट आत्मा कहां से आई है? आत्मा मुंबई की भी नहीं है, आत्मा दिल्ली की भी नहीं है, आत्मा कहां की है? आत्मा उस ब्रह्मलोक से आई है, इस धरती पर अपना पार्ट प्ले कर रही है। यस, इज इट क्लियर टू यू? तो ये आत्मा का परमानेंट एड्रेस है। तो हमने क्या क्या समझा, मैं कौन? मैं एक आत्मा, आत्मा यानी एक एनर्जी, राइट, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी में ड्राइवर है। आत्मा की सीट कौन सी है, मस्तक के बीच। आत्मा आंखों को दिखाई नहीं देती है, पर आत्मा है कैसी, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा के अंदर तीन शक्तियां कौन सी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से अच्छा सोचना है, बुद्धि का उपयोग करते हुए हमें हरदम राइट चॉइस लेनी है, और प्रयास करना है संस्कारों को हमें अच्छा बनाने के लिए, ताकि इस जन्म के बाद भी हमारा अगला कैसा हो, अगला भी हमारा बहुत अच्छा हो। आत्मा के जो निजी गुण हैं, सात बातें कौन सी, KP2LHVP, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। तो दिन भर में बार बार महसूस करना है मैं शांत स्वरूप, कभी महसूस करिए मैं प्रेम स्वरूप, कभी महसूस करिए मैं आनंद स्वरूप। और ये महसूसता ही हमें अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। तो लास्ट 5 मिनट्स मेडिटेशन, रेडी, चलिए, कमर सीधी, बैकबोन स्ट्रेट, आप आंखें खुली रख सकते हैं चाहे तो, जो सामने ऊपर लाइट है, ज्योति है, आप उसको देख सकते हैं। कुछ देर के लिए ध्यान एकाग्र करेंगे, अपने विचारों को भीतर की ओर ले जाएंगे, अपने आप से बातें करेंगे, मैं कौन? इस शरीर तो मात्र हड्डी मांस का पुतला है, मैं इस शरीर में एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मेरा ध्यान मस्तक के बीच केंद्रित है, मैं स्वयं को चमकते हुए सितारे के रूप में देख रही हूं। कितना सुंदर सितारा है, एकदम चमकीला सितारा। महसूस करें अपने उस असली आत्म स्वरूप को, अपने उस दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूं। मुझसे प्रकाश फैल रहा है। मेरा पूरा मस्तक प्रकाशमय है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा समस्त इंद्रियों का मालिक राजा हूं। आई एम द मास्टर। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित हूं। मेरे संस्कार उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, इसका ध्यान मुझे रखना है। मैं आत्मा राजा हूं। मेरी सोच स्वयं के लिए औरों के लिए सकारात्मक हो, ये मुझ आत्मा की चॉइस है। महसूस करें अपने पावर को। I choose to think right, positive. मैं ज्योति बिंदु आत्मा, प्रकाश का पुंज, मन से सोचने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। सबकी अच्छाई को देखते हुए मुझे सबके साथ प्रेम से रहना है। प्रेम की बोली बोलनी है। मुझे क्या करना, इट्स माई चॉइस। मैं आत्मा राजा हूं, मालिक हूं। महसूस करे मैं आत्मा ऊर्जा से भरपूर, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हूं। और ये एनर्जी मेरे चारों तरफ फैल रही है। शांति के प्रकंपन मुझसे मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। गहन शांति का अनुभव हो रहा है। और ये शांति, शांति के प्रकंपन मुझसे मेरे चारों ओर फैल रहा है।